नमो अर्हताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं एसो पंच नमोयारे सव पाव पणासनो मंगलानं च सवेसि पढमं भवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवल पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमं अरहंत लोगुत्तमं सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवल पन्नतो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयांचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली नमो अरहंताणं धवल ग्रंथ में अरहंतों का वर्णन उपसंहृत करते हुए पूर्ण करते हुए तीन गाथाएं आई। धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में तीन गाथाएं आती हैं। निदग्ध मोह तरुणो विथन्नाणान सायरुत्तिन्ना निहय निय विघ वग्गा बहुबाह विनिगया अयला दलिय मयन पयावा तिकाल विषये ही तीहि नयनी दिठ सैलठ सारा सुदद्ध तिउरा मुनि वैणु तिरयण तिसूल दारिय मोहनदासुर कबंध बिंद हरा सिद्ध सैलप रूवा अरहंता दुन्नय कयंता। जिनका ज्ञान जितना उत्कृष्ट होता है उनके वचन भी उतने ही अनोखे होते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने तीन गाथाओं में अपन ने 38 दिनों में जो अरहंत भगवान के विषय में पढ़ा है, जो समझा है, जो सुना है, जो जाना है, उसका संपूर्ण सार भर के रख दिया। सर्वप्रथम आचार्य कह रहे हैं, निदद्ध मोह तरुणो अरहंता। अरहंत कैसे हैं? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मोह रूपी वृक्ष को जो निर्दग्ध कर चुके हैं, जलाकर राख बना चुके हैं, ऐसे हैं। अर्थात पूर्णतः वीतराग, उनकी वीतरागता क्षायिक है। तीनों लोक की, तीनों काल की कोई विकारी शक्ति उनको दूषित नहीं कर सकती, उनमें विकृति को उत्पन्न नहीं कर सकती। सन 2018 के चतुर्मास में जवाहर चर्या के लिए यहां मठ मंदिर से सब साधु उठते थे, तब एक दिन आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और अन्य बहुत सारे साधु थे वहां उपस्थित थे। हम कुछ विलंब से पहुंचे, फिर हमने भगवान को नमस्कार किया, आचार्य महाराज को नमस्कार किया, और फिर क्रम से उठते थे सब साधु आहारचर्या के लिए। तो अचानक आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री ने प्रश्न किया, यहां दक्षिणा पथ में जिनालयों में एक दृश्य देखने मिलता है, भगवान के चरणों पर कई स्थानों पर पुष्प रखे रहते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्षुल्लक जी बताओ, भगवान के चरणों पर पुष्प रखने से भगवान रागी नहीं हो जाएंगे? हमने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि आचार्य श्री, जिनेंद्र भगवान की वीतरागता क्षायिक है और जो राग का क्षय कर चुके हैं उनमें अनंत काल तक रागोत्पत्ति संभव नहीं है। इतना हमने विस्तार नहीं किया, हमने केवल यही कहा कि आचार्य श्री, भगवान की वीतरागता क्षायिक है और क्षायिक वीतरागता प्रत्यावर्तित नहीं होती, लौटती नहीं है। एक बात और है इसमें, हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र का पद्यानुवाद किया हुआ है। उस पद्यानुवाद में देखो हमारे पास वो प्रति होगी, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अच्छा, वो मिल गई।
दिव्यस्रजो जिननम त्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ शयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो नरमन्त एव। इसका अन्वयार्थ पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य द्वारा किया हुआ है और हिंदी पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा किया हुआ है। दोनों पढ़ देते हैं अपन। जिन, हे जिनेन्द्र, दिव्य स्रज, दिव्य पुष्पों की मालाएं, नमत्र दशाधिपाना, नमस्कार करते हुए इंद्रों के, रत्न रचितान अपि मौली बंधान, रत्नों से बने हुए मुकुटों को भी, उत्सृज्य छोड़कर भवतः पादौ श्रयन्ति, आपके चरणों का आश्रय लेती हैं। यदि वा अथवा ठीक है कि तत्संग में आपका समागम होने पर सुमनसः पुष्प अथवा विद्वान पुरुष अपरत्र किसी दूसरी जगह नैव रमन्ते, नहीं रमण करते हैं। ये इसका अन्वयार्थ हुआ, यानी काव्य में जो शब्द आए थे उनकी हिंदी हुई। अब आचार्य विद्यासागर महाराज जी इसका अनुवाद करते हुए लिख रहे हैं, देवेंद्र की जिन यहां नमते हुए की, माला सुमोच मणि मंडित मौलियों को, लेती सुआश्रय सदा तव पाद का है, अन्यत्र ना सुमन वासव ठीक भी है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि समव शरण में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पर इंद्रों के मुकुटों की मालाओं की भरमार रहती थी, यानी भगवान के चरण कभी भी उन मालाओं से रहित नहीं होते थे। अभिप्राय ये हुआ कि समव शरण में भी तीर्थंकर के चरणों पर हमेशा कल्प तरुओं के पुष्पों की मालाएं, जो इंद्रों के मुकुटों को छोड़कर जब वो नमस्कार करते हैं तो वो मालाएं भगवान के चरणों पर आ जाती है। तो उसके लिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मालाएं जो है उन सुंदर मुकुटों को त्याग देती है और भगवान के चरणों की शरण को अंगीकार कर लेती है। जब समव शरण में भगवान के चरणों पर मालाओं की भरमार होती है और भगवान रागी नहीं होते, तो फिर जिनालय में यदि प्रतिमा के चरणों पर पुष्प हो तो फिर वह प्रतिमा रागी कैसे हो सकती है। देखो, अपन जानते हैं कि जैन पूजा पद्धति वर्तमान में दिगंबर आमनाय में दो प्रकार से चल रही है। जहां ये पद्धति नहीं है वो अपनी पद्धति से आराधना करते हैं, और जहां ये पद्धति है वो इस पद्धति से आराधना करते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि भगवान रागी हो जाते हैं, सौहार्द का प्रतीक नहीं है। आप किसी की श्रद्धा पर एक प्रकार से अपने वचनों के बाण चला रहे हैं। अपनी धारणा में हर कोई अपने आप को सही मान रहा है, लेकिन जब अपन इन शास्त्रों के वचनों को देखते हैं तो फिर अपना कर्तव्य होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका यही एक मार्ग होता है कि वो अपनी धारणाओं को शास्त्रों से ऊंचा स्थान न दे, और जो देगा सम्यक तो उसका साथ छोड़ देगा। जब समव शरण में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों पर वैसी स्थिति है जैसा वर्णन यहां पर हो रहा है, तो फिर साक्षात भगवान रागी नहीं हुए, उनकी प्रतिमा कैसे रागी हो जाएगी। प्रतिमा में भी तो वही गुण स्थापित किए गए ना प्रतिष्ठा विधि में। तो बात ऐसी है कि भगवान की वीतरागता क्षायिक है, ये हम बताना चाह रहे थे। तो सब हंसने लग गए वहां पर, आचार्य महाराज भी थे और सारे साधु थे, बोले कि ये तो जिनवाणी पुत्र है तो एकदम शास्त्र की बात करते हैं। तो उन्होंने, हमने क्या शास्त्रीय जवाब दिया था, तो इसलिए फिर इस रूप में उन्होंने, मतलब उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी कि चलो बड़ी खुशी की बात है कि भगवान रागी नहीं होते अपने जिनेन्द्र देव दिगंबर मत में, और श्वेतांबर मत में भी ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि जो वितराग हो चुके हैं वो वापस रागी हो जाए। देखो दूसरी वितरागता और होती है, औपशमिक वितरागता, इसका भी जैन सिद्धांत में वर्णन है। कोई साधु ध्यानस्थ होकर उपशमक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए, जैसे ऋषभदेव भगवान पूर्व में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे मनुष्य भव में, और फिर वहां दीक्षा लेकर के, वो दीक्षा लेने का कारण भी ऐसा था कि उनको जो बागवान ने उद्यानगत सरोवर से सुंदरतम सहस्र दल कमल ला करके भेंट किया, तो उस कमल को वो सूंघ रहे थे। सूंघते समय उनकी आंखें बंद थी और सूंघते सूंघते उनने मनोहर सुरभि से युक्त कमल पर ऐसे हाथ फेरा, हाथ फेरा तो हाथ जो था वो बीच वाला जो हिस्सा है कमल का, कर्णिका वाला पीला वाला हिस्सा रहता है अंदर बीच में, वहां गया और उनके हाथ में कुछ कांटे जैसा चुभा। कर्णिका थोड़ी कठोर तो होती है, पंखुड़ियां एकदम मुलायम होती है, नरम होती है, कांटे जैसा उनको लगा कि अरे मैंने हाथ फेरा है कमल पर और आश्चर्य की बात है कि इसमें कांटे जैसा क्या चुभ रहा है मुझे, कर्णिका में ऐसी चुभन तो हो नहीं सकती। तत्काल उन्होंने आंख खोल करके देखा तो वहां पर एक मरा हुआ भ्रमर था। उन्होंने मन में विचार किया कि कमल के अंदर मरा हुआ भ्रमर भौंरा कहां से आ गया। उन्होंने उस बागवान पर, उस मालाकार पर क्रोध न करते हुए इस घटना पर विचार करना प्रारंभ किया। वो मालाकार पर क्रोध कर सकते थे कि तुमने देखकर शोध कर मुझे कमल नहीं दिया, लेकिन नहीं, इस समय उनकी दिशा और दशा परिवर्तन के अभिमुख थी। उन्होंने विचार किया कि कमल इसके अंदर कैसे, कमल के अंदर भ्रमर कैसे मर गया, मरा हुआ भ्रमर कहां से आ गया। विचार करने पर उन्होंने मतिक ज्ञान से तो भ्रमर को जाना, श्रुत ज्ञान से ही जाना कि ओहो अब समझ में आया। कल सायंकाल यह भ्रमर इस कमल का रस पान कर रहा होगा, और सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई होगी और रात भर उस कमल के भीतर वायु का अभाव हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई होगी। पर एक तथ्य यह भी है कि भ्रमर कोई दुर्बल जंतु नहीं होता, उसके अंदर बड़ी शक्ति होती है। वह लकड़ियों में छिद्र कर डालता है और अंदर अपने रहने का स्थान बना लेता है। मूड़ बिद्री नाम का एक तीर्थ स्थान है दक्षिण कर्नाटक में, साउथ कैनारा बोलते हैं उसको। वहां पर 18 जिनाले हैं और वहां से 18 किलोमीटर दूर कारकट में भी 18 जिनाले हैं। 18 18 18 तो उन जिनालयों में जो मल्लिनाथ भगवान का जिनाले है उसके पास मार्ग को आप पार करके इस ओर आएंगे तो एक ऐसा जिनालय मिलेगा आपको जहां के काष्ठ स्तंभ लकड़ी के खंभे भ्रमरों के घोंसलों से भरे हुए हैं। उन सब खंभों में भ्रमरों ने छेद कर करके अपने घर बना लिए। वहां पर एक सरस्वती माता की भी प्रतिमा बाहर विराजमान है, भव्य प्रतिमा है। चक्रवर्ती ने विचार किया कि जब इस भ्रमर में काष्ठ को छेदने की क्षमता है तब इसने कमल में छेद कर प्रस्थान क्यों नहीं किया, अपने जीवन की रक्षा क्यों नहीं की। वही अपने अंदर प्रश्न कर रहे हैं, वही अपने अंदर उसके समाधान निकाल रहे हैं। उन्होंने समझा कि सचमुच अपने इष्ट विषय को कोई क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहता। इस कमल को यह भ्रमर अत्यंत पसंद करता था। भ्रमर का इष्टतम विषय यह कमल था। इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्टतम से कोई दूर नहीं रह सकता। एक तो उससे दूर नहीं होना चाहता था, दूसरी बात वो उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। सम्यक दृष्टि को भी भ्रमर का रूपक दिया गया है कि सम्यक दृष्टि रूपी भ्रमर अपने इष्टतम जिनेंद्र देव से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। कभी किसी परिस्थिति वश अथवा अपने सांसारिक क्रियाकलाप के क्रम के कारण उसको जिनाले से बाहर निकलकर फिर सांसारिक कार्यों में संलग्न होना पड़ता है, लेकिन जब वो जिनाले से बाहर निकलता है तब उस विरह की व्यथा का वर्णन यशस् तिलक चंपू में उपासक अध्ययन नाम का जो विभाग है वहां आचार्य सोमदेव सूरि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। हे अरहंत, आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता पर क्या करूं, मैं कर्माधीन संसारी प्राणी हूं। मेरे साथ माया जाल है, आप तो जंजाल से मुक्त हैं, मुझे जाना पड़ रहा है। सुप्रभु, जाता हूं। और फिर गदगद भाव से कहता है भूयात पुनर्दर्शन। केवल एक रटंत क्रिया जैसी प्रक्रिया नहीं है, कोई रूढ़ी नहीं है, कोई सीखी सिखाई पद्धति नहीं है, बल्कि भाव विभोर होकर भूयात पुनर्दर्शन इस प्रकार भगवान को अपने हृदय में लेकर वो चला जाता है। एकदम भावपूर्ण स्थिति रहती है निकलते समय और पीठ करके नहीं निकलता। अगर इधर पीठ कर दी तो फिर उसका भविष्य क्या होगा ये समझने की बात है। निकलता है फिर चला जाता है वहां पर कुछ समय तक। उसके अंदर वो अरहंत भगवान का संपर्क छाया रहता है। जैसे आप किसी मेहमान को विदा करते हैं और ट्रेन निकल जाती है तो कुछ देर तक आप बातचीत नहीं करते किसी से, जो आपके प्रिय मेहमान थे। ऐसा नहीं कि जिनसे आप छुटकारा चाहते थे, ऐसे नहीं, जो आपके इष्ट थे। कुछ काल तक वो वियोग रहता है, फिर अपन थोड़े समय में अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। निदग्ध मोह तरुण भगवान की वीतरागता प्रशायिक है और वज्रनाभि चक्रवर्ती ये विचार कर रहे हैं कि यह भ्रमर विषयासक्त होकर संकट को प्राप्त हुआ, दम घुट जाने से इसकी मौत हुई। बहुत विकट स्थिति होती है, सांस रुक जाए और मृत्यु हो तो क्या भयानक वेदना होती है। ये जो प्राणायाम करने वाले हैं ज्यादा देर अगर सांस रोक ले तो उनको पता होता है क्या हाल होता है। तो एक ऐसी श्रेणी भी होती है, उन्होंने इस घटना से विरक्त होकर दीक्षा ले ली, इस घटना के कारण संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर दीक्षा ले ली, घोर तपस्या की, 6 महीने का उपवास किया अंत में और ध्यान में 2 बार औपशमिक वीतरागता को प्राप्त किया, जिस वीतरागता से लौटना पड़ता है और जिस वीतरागता को एक जीव मोक्ष जाने से पूर्व केवल 4 बार प्राप्त कर सकता है। उस औपशमिक वीतरागता को उन्होंने प्राप्त किया, एक भाव में 2 बार प्राप्त होती है अधिकतम, कईयों को नहीं होती और किन्हीं को 1 बार होती है और इन ऋषभदेव भगवान को 2 बार 11वां गुण स्थान प्राप्त हो गया। दूसरी बार 11वें गुण स्थान में ही आयु पूर्ण हो गई और वो सीधे 4थे गुण स्थान में आ गए, देवायु शुरू हो गई। तो देवायु में 4थे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता है और सीधे सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहम इंद्र पद को प्राप्त हुए। 16 कारण भावना भा चुके थे, 11 अंगों की पार्टी भी थे, वहां चले गए, वहां पूरे 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया। सो सर्वार्थ सिद्धि के देव चतुर्दश पूर्वधारी होते हैं, लौकांतिक देव भी 14 पूर्वों के धारी होते हैं, सौधर्म इंद्र भी 14 पूर्वों के धारी होते हैं। ये 3 प्रकार के ऐसे देव हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होते हैं। तो उनकी वीतरागता तो छूट गई, वो पुनः सराग हो गए, देवगति में अहमिंद्र पद में 4थे गुण स्थान में अवस्थित रहे, फिर वापस यहां मनुष्य पर्याय में माता मरु देवी से जन्मे, पिता नाभिराय उनके तात रहे और फिर वो ना तपस्या करके, जब उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या करके शपक श्रेणी पर आरोहण किया, तो अब की बार वो 11वें गुणस्थान में नहीं आए। 11वें गुणस्थान में औपशमिक वीतरागता होती है, अब 12वें गुणस्थान में चले गए, क्षायिक वीतरागता में चले गए। और 12वें गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त रहकर घाती कर्मों का सब सर्वनाश करके 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश होता है, 12वें के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का नाश होता है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के अंतिम अध्याय का प्रथम सूत्र क्या कहता है, मोह क्षयात्। मोह का क्षय अलग से बता रहे हैं, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात् केवलम, फिर 3 कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, केवल लब्धियों को प्राप्त होते हैं, 9 क्षायिक भाव प्राप्त हो जाते हैं। अकेला केवल ज्ञान नहीं होता, 9 क्षायिक भाव होते हैं। वहां से लौटना नहीं होता। तो अपन ने जिन बिंब में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा विधि का महोत्सव संपन्न किया है, उसमें अपन ने औपशमिक वीतरागता की स्थापना न करके क्षायिक वीतरागता स्थापित की है, इसलिए वह प्रतिमा भी कभी सराग नहीं होगी। उसमें 5 कल्याणकों की प्रतिष्ठा रहेगी, ये एक सत्य है, परंतु अपन यदि ये कल्पना कर लें कि उसमें जो वीतरागता स्थापित की गई है उसका अभाव हो जाएगा, तो संभव नहीं, उस सर्वकाल वीतराग रहेगी। फिर कह रहे हैं वित्थिन्नन्नान सायरुत्तिन्ना, विस्तीर्ण अज्ञान रूपी समुद्र से पार उतर चुके हैं कौन, अरहंत भगवान। केवल ज्ञान कितना विस्तृत है इसको अगर समझ लिया जाए तो पता चलेगा कि जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक जो अज्ञान है वो उससे कम विस्तीर्ण नहीं है। उस अज्ञान रूपी सागर को जो पार कर चुके हैं, और कैसे हैं, निहाय निअविघ्न वग्गा, जिन्होंने अपने विघ्न समूह को निहत कर डाला है, अब कोई विघ्न उनके निकट नहीं आ सकता, सारे विघ्न वो समाप्त कर चुके हैं। और कैसे हैं, बहुबाह विणिक गया अयला, बहुत सारी बाधाओं से विनिर्गत हो चुके हैं, पार हो चुके हैं और अचल है, कोई चलायमान नहीं कर सकता, अरहंत अचल है। दलीय मयण पयावा, जिन्होंने काम के प्रताप को दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जो पूर्ण काम विजेता है, तिकाल विषयी ही तीह नयनी ही दिठ सलठ सारा, क्या सुंदर बात है। 2 द्रव्य चक्षु हैं उनके और 1 भाव चक्षु है, तो इन 3 नेत्रों के माध्यम से जिन्होंने दिट्ठ सैलठ सारा सर्व पदार्थों के सार को जिन्होंने देख लिया है। देखिए 3 नेत्र वाले जिनेंद्र भी कहीं कहीं पर अपने को उपलब्ध होते हैं। हस्तिनापुर में त्रिनेत्र आदिश्वर स्वामी का बड़ा ही भव्य मनोहर बिंब है, इतना सुंदर है कि देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, मन ही नहीं भरता। हमारे पास यदि चित्र हुआ तो हम बताने का आपको वो करेंगे उपक्रम। उनकी आंखों को देखो तो ऐसा लगता है कि अपन प्रतिमा को न देख करके साक्षात भगवान को देख रहे हैं। आश्रम वाले जिनालय में, ब्राह्मी सुंदरी आश्रम है वहां हस्तिनापुर में, वहां के जिनालय में ये आदिश्वर प्रभु है। दिख रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है?
रिफ्लेक्शन हो रहा है गुरुदेव, बहुत ज्यादा उधर धूप भी आ रही है ना इसलिए। हाँ हाँ अभी अभी दिखा। हाँ नमोस्तु भगवान।
तीनों आंखें दिख रही है ना अच्छे से?
हाँ हाँ
ये हमने थोड़ा ब्राइट करके दिखाया है। ऐसे देखा? एक मिनट रिफ्लेक्शन होगा
गुरुदेव मेरे ख्याल से। आप दूसरे साइड पर ले, जिस साइड पर आप लिए लेफ्ट साइड में आप इसको आईपैड को करिए तो साफ दिखेगा उधर से, क्योंकि धूप वगैरह भी पड़ रही है ना तो पूरा दिख रहा है। हाँ हाँ
रिफ्लेक्शन होगा।
हाँ वो आज धूप है ना तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें।
हाँ एक मिनट खिड़की बंद करेंगे ना तो शायद ठीक हो जाए।
हाँ अभी दिखे एकदम साफ। हाँ
ठीक
है। हाँ तीसरी आंख भी दिख रही है।
ये आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा हुआ है, तीन आंख वाले भगवान आदिनाथ भगवान या अरहंत भगवान है। ये तो आदिनाथ भगवान है, उन्होंने अरहंत भगवान के बाद विषय में लिखा है। और अपन यहां देखें ना सहस्रनाम स्तोत्र में त्रिनेत्रस्त्र्यंबकस्त्र्यक्ष है ना, जो सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ चुके हैं उनको याद होगा, त्रिनेत्र त्र्यंबक त्र्यक्ष ये सब तीन नेत्र के ही सूचक है। तो जिन्होंने तीन नेत्रों से संपूर्ण पदार्थों के सार को, द्रव्य गुण पर्याय को देख लिया, शुद्ध तिवरा, जिन्होंने तीन पुरों को शुद्ध कर दिया, जला डाला, नष्ट कर डाला। कौन से तीन पुर? तीन नगरों को अरहंत भगवान ने जला डाला। कौन से तीन नगरों को? आप वहां हिंसा वगैरह के बारे में मत सोचने लग जाना, आजकल दिमाग ज्यादा चलते हैं लोगों। तीन नगर जो है, जन्म, जरा और मरण, इन तीन नगरों को जिन्होंने जला डाला। अथवा राग, द्वेष और मोह, इन तीन को जिन्होंने जला डाला। और मुनि वैणु, जो मुनिराज मुनियों के, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के स्वामी है। मुनि का अर्थ अपन ने पढ़ा था पहले, मुनि का अर्थ अवधि, मन परे अथवा केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है उनको मुनि कहते हैं। और मुनिपति का अर्थ होता है मुनियों के नाथ, उन केवल ज्ञानी, अवधि, मन परे ज्ञानी, इन सब के प्रधान अरहंत होते हैं। और तिरेण तिसूल दार्य मोहन धासुर कबंद बिंद हरा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, त्रिशूल द्वारा मोह रूपी अंधासुर, मोह रूपी अंधकार को अंधासुर कह रहे, उसके कबंद, कबंद का अर्थ होता है जिस, ये धड़ पूरा, सिर ना हो और केवल नीचे का हिस्सा हो तो उसको कबंद कहते हैं। उस कबंद धड़ को और उसकी बिंद हरा, बिंद का अर्थ होता है वृंद, क्योंकि मोह, मोहांधा, मोह रूपी जो अंधासुर है ना, वो एक रूप में नहीं है, वो दर्शन मोह, चारित्र मोह आदि अनेक रूपों में, तो उन सबको इन्होंने नष्ट कर दिया तीन नेत्र रूपी त्रिशूल से। वहां पर हस्तिनापुर में जो यही आदिनाथ भगवान जिनका मुखड़ा अभी अपन ने देखा, नीचे ऐसे त्रिशूल का चिन्ह भी बना हुआ है, त्रिशूल का चिन्ह है ना नीचे भगवान के, तो उससे उन्होंने मोहन दासुर का मर्दन किया। और शुद्ध सैलप रूवा, वाह ये लिखा सकते हैं, नी आदिनाथ भगवान के नीचे एक त्रिशूल का आकार ऐसे बना हुआ है नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। और सिद्ध सैलप पर हुआ, सकल आत्मस्वरूप को जिन्होंने सिद्ध कर लिया, यानी सकल परमात्मा हो गए, अथवा सकल आत्मस्वरूप को जिन्होंने सिद्ध किया, आत्मा के अनुजीवी गुणों को प्रकट करके आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को जिन्होंने उपलब्ध किया, वे अरहंत हैं। और वे अरहंत ही ऐसे परमात्मा हैं जो दुर्नय कयंता, दुर्नय अर्थात मिथ्या ज्ञान का अंत कर सकते हैं, मिथ्यात्व का अंत अरहंत के अतिरिक्त इस जगत में कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और उनकी वाणी के माध्यम से गुरुजन मिथ्यात्व का अंत करते हैं, तो वाणी तो उन्हीं की कह रही है, तो कुल मिलाकर अरहंत से ही मिथ्यात्व का अंत हो रहा है। ऐसे अरहंत भगवान के लिए नमो अरहंतान, नमस्कार। अब कुछ और जानकारियां हैं अरहंत के विषय में, और बड़ी महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां हैं जो सांकेतिक रूप से हमने बीच में दी भी होगी, लेकिन अब अपन विशेष रूप से उस गाथा को सामने रख करके उन जानकारियों को आगामी सत्र में देख लेंगे। आज यहीं पर अपन इन तीन गाथाओं के माध्यम से अरहंत देव का स्मरण करते हुए, नमो अरहंताणम करते हुए इस सत्र को पूर्ण करते हैं। देव्य ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः। आचार्योपाध्याय सर्वसाधु गुरुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त।